नारद मुनि ने राजा प्राचीन वैश्य से कहा, हे राजा, जो व्यक्ति शास्त्र अनुमोदित कर्मों का आचरण करता है वह सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता। एक दफा दोबारा पढ़ता हूँ। नारद मुनि ने कहा, राजा प्राचीन वैश्य से कहा, हे राजा, जो व्यक्ति शास्त्र अनुमोदित कर्मों का आचरण करता है वह सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता। तात्पर्य, जिस प्रकार से सरकार नागरिकों को विशेष रूप से कार्य के लिए कुछ नियम बनाती है, उसी प्रकार वेदों में ऐसे आदेश हैं जो हमारे सकाम कर्मों को नियंत्रित एवं नियमित करते हैं। सभी जीव इस संसार में अपने आप भोग के लिए आए हैं, फलतः इंद्रिय भोग को नियमित करने के लिए वेद हैं। जो व्यक्ति वैदिक नियमों के अनुसार आचरण करता है वह अपने कर्मों एवं उनके फलों से बंधता नहीं है। भगवद गीता में 3.9 में आया है, यज्ञ अर्थार्थ कर्मणा, मनुष्य को यज्ञ के लिए अर्थात विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना चाहिए। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, अन्यथा कोई भी कर्म जीव के बंधन का कारण बनेगा। मनुष्य विशेष रूप से जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आता है, अतः उसे वैदिक नियमों के अनुसार आचरण करना होता है, जिससे वह अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूरा कर ले और साथ ही धीरे धीरे भव बंधन से भी मुक्त हो ले। ऐसे नियमों के अनुसार किया गया कर्म ज्ञान कहलाता है। निसंदेह वेद शब्द का अर्थ ज्ञान ही है। ज्ञानेन न स लिप्यते बताता है कि वैदिक नियमों का पालन करने से मनुष्य कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वैदिक आदेश अनुसार आचरण करने का उपदेश दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी राज्य के नियमों तथा लाइसेंसों के अनुसार कार्य करता है तो वह किसी अपराध में नहीं पकड़ा जाता, किंतु मानव निर्मित नियम सदैव दोषपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे ऐसे व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं जो त्रुटियां कर सकते हैं, मोहग्रस्त हो सकते हैं, ठगे जा सकते हैं और अपूर्ण इंद्रियों वाले होते हैं। किंतु वैदिक आदेश इनसे भिन्न होते हैं, क्योंकि उनमें ये चारों दोष नहीं पाए जाते। वैदिक आदेशों में त्रुटि नहीं हो सकती। वैदिक ज्ञान सीधे ईश्वर से प्राप्त होता है, अतः उसमें ठगी, मोह, त्रुटियां, इंद्रियों की अपूर्णता का प्रश्न नहीं उठता। सारा वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि वह परंपरा द्वारा ईश्वर से प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवतम में 1:1:1 कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, इस ब्रह्मांड के आदि प्राणी को जो आदि कवि या ब्रह्मा कहलाता है, श्री कृष्ण द्वारा अंतःकरण में उपदेश दिया गया था। कृष्ण से इन आदेशों को प्राप्त करके ब्रह्मा ने इस ज्ञान को परंपरा विधि से नारद को प्रदान किया और नारद ने इसे व्यास को दिया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान परिपूर्ण है। यदि हम वैदिक ज्ञान के अनुसार आचरण करते हैं तो पाप कर्मों में फंसने का प्रश्न ही नहीं उठता। बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी ने उसकी व्याख्या की है। ओम अज्ञान तिमरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम ददाति सपदांतिकम। वंदेयम श्री गुरु श्री उत्पत कमलम श्री गुरुन वैष्णवाक्षच श्री रूपम सागर जातम सहगर रघुनाथतम तम सजीव सावदैतम सावदूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नमिताक्ष। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरु भिक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन प्रभुपाद नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तावृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो नारद मुनि ने राजा प्राचीन वशिष्ठ से कहा, हे राजा, जो व्यक्ति शास्त्र अनुमोदित कर्मों का आचरण करता है वह सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता, यानी कर्म बंधन में नहीं फंसता। तो जीव की स्थिति तो कुछ और ही है, हमारी कहानी कुछ और ही है। कर्म बंधन में फंसने की हमको आदत पड़ चुकी है, इस जन्म की नहीं, अनेकानेक जन्मों की आदत पड़ चुकी है। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। जीव माया के द्वारा मुक्त कर लिया जाता है और उसकी कृष्ण चेतना उभर नहीं पाती, इसीलिए जीव मनुष्य के लिए चार वेद 18 पुराण श्रीमद् भागवतम ये सब प्रदान किए गए हैं। जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण, कृष्ण ने कृपा करके हमारे को वेद और पुराण दिए हैं। मनुष्य के चार पुरुषार्थ सामान्य रूप से बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। दो में रुचि होती है, दो में रुचि नहीं होती। धर्म में रुचि नहीं होती और मोक्ष में रुचि नहीं होती। रुचि किस में होती है? अर्थ में और काम में। अर्थ की प्राप्ति हो जाए, धन की प्राप्ति हो जाए, अपनी कामनाओं को पूर्ण कर लूं, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जीव यहां आया है किस लिए? भोग करने के लिए। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष का अगर सही उसका अर्थ निकाला जाए तो धर्म मतलब न्यायपूर्ण तरीके से अर्थ का उपार्जन करना, धन का उपार्जन करना न्यायपूर्ण तरीके से, और अपनी उचित मांगों को उचित कामनाओं को पूर्ण करके धीरे धीरे उन कामनाओं से भी मुक्ति को प्राप्त कर लेना, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेना, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का सही अर्थ है। लेकिन मोक्ष प्राप्त करके भी क्या करें? इसीलिए पंचम पुरुषार्थ बताया गया है प्रेम। जब कामनाओं से मुक्ति पालें, जब कामनाओं से वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तो हमें कहाँ बढ़ना चाहिए? हमें बढ़ना चाहिए पंचम पुरुषार्थ प्रेम की तरफ। जब तक मन में कामनाएं हैं, भौतिक भोगने की इच्छा है, तब तक प्रेम हो नहीं पाता। जब कामनाओं से मुक्त हो जाए तो प्रेम नामक पंचम पुरुषार्थ की ओर बढ़ना चाहिए। यही है जो हमारे को हमारे अंशी यानी कृष्ण से मिलाएगा और यही हमारे आनंद की खोज यहां पूर्ण हो जाएगी। अपनी इंद्रियों की प्रीति की इच्छा को काम कहते हैं और कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति वांछा को पूर्ण करने को क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। आत्मेंद्रिया प्रीति वांछा तरे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो संसार में जीव आता तो अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए है, जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसको भौतिक ज्ञान प्रदान किया जाता है माता पिता के द्वारा और समाज के द्वारा। बच्चा अभी संघर्ष करके बाहर निकला है, इस संसार में आया है, लेकिन उस संघर्ष करते करते अभी चलना भी खड़ा नहीं होता कि उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। बच्चा 2 साल का हो गया, प्री नर्सरी स्कूल, बच्चे को कौन संभाले? स्कूल वाले संभालेंगे। माता पिता को आज़ादी चाहिए, बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है, प्री स्कूल, फिर नर्सरी, फिर किताबों का बोझ, स्कूल की पढ़ाई। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हीन भावना का शिकार हो जाता है, हीन भावनाएं जन्म लेती हैं। वो बच्चा मुझसे आगे क्यों, वो बच्चा पढ़ाई में तेज क्यों, वो बच्चा खेलकूद में तेज क्यों। माता पिता का दबाव, घर में, स्कूल में टीचर्स का दबाव, बच्चा स्ट्रगल करता हुआ आगे बढ़ता है, भौतिक ज्ञान लेकर के हमारी यात्रा शुरू होती है, दबाव बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दबाव बढ़ता जाता है। स्कूल से निकले, कॉलेज में आए, कॉलेज से निकले, रोजगार की तलाश हर जगह, हम हीन भावना के शिकार होते ही रहते हैं। हर जगह प्रतियोगिता, हर जगह कंपटीशन, किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमारा रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है, क्या स्कूलिंग में कितने मार्क्स थे, कॉलेज में कितने मार्क्स थे, कुछ नहीं किया तुमने, कुछ हासिल नहीं किया। इस तरीके से जीव की यात्रा शुरू होती है। जीव अगर असफल रहता है, दुखी होता है, तो भी परेशानी है। अगर किसी को सफलता प्राप्त होती है तो भी उसके अंदर अहंकार का भाव जागृत हो जाता है। एक तरफ हीन भावना है और एक तरफ अहंकार है, दोनों चलते हैं। तो यहां बताया गया है कि अगर शास्त्र अनुमोदित, नारद जी कहते हैं शास्त्र अनुमोदित हम कर्मों का आचरण करते हैं तो क्या होता है, कर्म बंधन में लिप्त नहीं होते। अब शास्त्र अनुमोदित कर्म क्या हैं, वैदिक ज्ञान क्या है, वैदिक ज्ञान शास्त्र अनुमोदित कर्म वो कर्म, यानी वैदिक ज्ञान वो ज्ञान जो हमें कृष्ण के द्वारा प्राप्त होता है, यानी इस ब्रह्मांड से परे का ज्ञान, इस ब्रह्मांड से परे का ज्ञान जिसका हमारे बाल्यावस्था में हमारा कुछ हमको मालूम नहीं होता, कुछ मालूम नहीं होता, हमारी युवावस्था भी ऐसे ही निकल जाती है घोर संघर्ष करने में हमारा समय निकलता ही जाता है। वैदिक ज्ञान कौन देगा, भगवान का ज्ञान कौन देगा, इस ब्रह्मांड से परे का ज्ञान कौन देगा। इस भौतिक ज्ञान को ही हम स्वीकार या समझ नहीं पाते और हमारे को रिजेक्टेड करार कर दिया जाता है, इस भौतिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। तो यहां प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक ज्ञान में चार प्रकार के दोष निश्चित रूप से पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो है कि मनुष्य जो है कितना भी ज्यादा बुद्धिमान हो, वो त्रुटियां अवश्य करता है, गलतियां उससे हो ही जाती हैं। हमारे देश में महात्मा गांधी बहुत उच्च स्थान पे रहे, लेकिन महात्मा गांधी के अगर जीवन को आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, और अंत में जब उनको कहा गया कि आप नई दिल्ली भवन मत जाइए, वहाँ खतरा है, तो भी उन्होंने जो है उस बात को स्वीकार नहीं किया और उनका अंत जो है वहीं पे हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी त्रुटियां कर रहे और उन्होंने भी उनकी हत्या की गई, स्वीकार नहीं किया। बड़े बड़े जहाज विमान निर्माण किए जाते हैं, टाइटैनिक जहाज अपने पहले ही सफर में डूब गया, बहुत बड़ा गर्व था टाइटैनिक जहाज को बनाने वालों को, पहले ही उसमें डूब गया। तो यह है कि मनुष्य की त्रुटियां अवश्य होती हैं मनुष्य के द्वारा। और दूसरा, भ्रमित होना, ये मनुष्य का दूसरा एक दोष है कि भ्रमित होता है, और ये दोष कमोबेश सबके अंदर होता है। मैं ये शरीर हूं, अपने आप को शरीर मान लेना, इस भ्रम में रहना, ये दोष कमोबेश सबके अंदर पाया जाता है। और तीसरा दोष प्रभुपाद बताते हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति। हर मनुष्य में धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपने आप को बुद्धिमान होने का दिखावा करता है कि मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, मैं ये मानता हूं, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, फलाना फलाना। और चौथा, हमारी इंद्रियां जो हैं वो अपूर्ण है और उस पर हमको बहुत अधिक भरोसा है, क्या आप मुझको भगवान को दिखा सकते हैं? प्रभुपाद कहते थे हाँ दिखा सकता हूं, तुम्हारे आंखों का मोतिया बिंद निकालना पड़ेगा तो फिर दिखा सकता हूं। तो इंद्रियां जो हैं हमारी अपूर्ण होती हैं, और इन चार दोषों के होते हुए हम किस प्रकार से आगे बढ़ें, कौन से प्रमाण को देखें, किसको सही माने, तो शास्त्र बताते हैं कि प्रमाण के तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार से किसी बात को प्रमाणित किया जा सकता है। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष यानी जो अक्ष आंखों के सामने हो, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। आपने किसी चीज को देखा और उस पर आपने हूबहू विश्वास कर लिया। लेकिन इंद्रियां तो हमारी अपूर्ण हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या पूर्ण रूप से ठीक है? दूसरा प्रमाण अनुमान प्रमाण, हम अनुमान लगाते हैं, हम अंदाजा लगाते हैं, लेकिन वो प्रमाण भी जो है पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। और तीसरा प्रमाण कौन सा होता है? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण जो है वो प्रमाणिक शास्त्रों से हमको प्राप्त होता है। जैसे कृष्ण से ज्ञान प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त हुआ नारद जी को, नारद जी से ज्ञान प्राप्त हुआ व्यास देव जी को, ये परंपरा से ज्ञान प्राप्त हो रहा, ये शब्द प्रमाण है। इसको स्वीकार करना चाहिए। दिखने में जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं, अगर हम सूर्य को देखें तो सूर्य का आकार कैसा लगता है हमारे को? एक थाली से बड़ा नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है कि सूर्य एक थाली के समान है। लेकिन अगर शास्त्रों को पढ़ें, शास्त्रों की सुनें, तो शास्त्र कहता है सूर्येण ही विभजन्ते दिशाखम धर्म ही भिदा स्वर्ग अपवर्गो नरका रसो कांसी च सर्वशा। हे राजन, सूर्य देव तथा सूर्य लोक ब्रह्मांड की समस्त दिशाओं का विभाजित करते हैं, समस्त दिशाओं को। सूर्य के कारण ही हम समझ पाते हैं कि आकाश स्वर्गलोक यह संसार तथा पाताल लोक क्या है, भोग और मोक्ष के स्थान कौन कौन से हैं और कौन से नरक तथा अतल आदि लोक हैं, है ना। जो सूर्य हमारे को एक गोला सा दिखाई देता है, ये पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, है ना। तो हमारा क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा यहां फेल हो जाता है। और शास्त्रों से हमें पता लगता है, अनुमान प्रमाण भी काम नहीं करेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण भी काम नहीं करेगा। भूमंडल की परिक्रमा करते हुए सूर्य देव एक क्षण में 2000 योजन, अथवा 2000 योजन का मतलब 16000 मील की दूरी तय करता है। और सही पैमाइश दी गई है 2000 योजन और 2 कोस, इतना एक्यूरेट। 2000 योजन और 2 कोस यानी 16004 मील सूर्य एक क्षण में परिक्रमा करता है। और इस तरीके से भूमंडल की परिक्रमा लगभग 76 करोड़ मील की होती है। ये शब्द प्रमाण है, ये वैदिक ज्ञान है। और सूर्य से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है, जहां हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने चंद्रमा की यात्रा कर ली, हम चंद्रमा से हो आए। वो सूर्य से 1,00,000 योजन यानी कि 8,00,000 मील ऊपर है। प्रभुपाद कहते हैं पता नहीं कौन से चंद्रमा पे हो आए। तो ये है भ्रम, ये है अनुमान और हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन शब्द प्रमाण जो शास्त्र हमको देता है, जो हमारे को वेद देते हैं, जो हमारे का भगवान ज्ञान हमारे को देते हैं। तो अब इसमें एक बड़ी मुख्य बात है जो हमारे को समझनी चाहिए। यहां पर नारद मुनि कह रहे हैं जो व्यक्ति शास्त्र अनुमोदित कर्मों का आचरण करता है, आचरण का मतलब पालन करता है, वह सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता। अब किसी आदेश का अगर आपको पालन करना है, उस पालन करने से पहले 2 बातें और हैं। पालन करने से पहले तो ये है कि आपको उस ज्ञान का या तो श्रवण करना है या अध्ययन करना है। जिस ज्ञान को हमने पालन करना है, पालन करने से पहले या तो आप उसका श्रवण करेंगे या उसका अध्ययन करेंगे, बहुत जरूरी है ना। और वो कर लेने के बाद दूसरा जो सीढ़ी है उसको स्वीकार कर लेना। अगर हम उसको स्वीकार कर लेंगे तभी फिर हम उसको पालन करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अब अध्ययन कर लिया, श्रवण कर लिया, लेकिन स्वीकार नहीं किया, तो फिर आचरण करने का प्रश्न ही कहां उठता है, प्रश्न ही कहां है। भगवान का ज्ञान, वैदिक ज्ञान, भगवान कहते हैं भगवद गीता के 3rd chapter 13th verse श्लोक में, यज्ञ शिष्टा अशिना संतो मुच्यंते सर्व कल विषय भुजंते त्व अघम पापम ये पचंती आत्म कारणा त्व अघम। अघम जो अपने लिए भोजन पकाता है, केवल अपने लिए खाता है, अघम घोर पाप को खाता है। और संत जन जो हैं सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्यों कि यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन प्राप्त करते हैं। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यंते सर्व कल विषय भुजंते तो अघम पापम ये पचंती आत्म कारणात्। अब ये भगवान का ज्ञान है। हमारी भगवद गीता पूरे विश्व भर में फैली हुई है। भगवद गीता मैराथन भी आता है, हम उसको मनाते हैं, भगवद गीता बांटते हैं, लेकिन अगर इस बात का सर्वे किया जाए कि भगवद गीता कितने लोगों ने पढ़ी है तो उसकी संख्या अच्छी खासी होगी पढ़ने वालों की, लेकिन उससे कम होगी उसको स्वीकार करने वालों की, और उससे कम होगी उसको आचरण में लाने वालों की। कई लोग तो एक प्रैक्टिस बना लेते हैं कि हमें भगवद गीता का बांचना है, जी भगवद गीता का हमने पाठ कर लिया। अब भगवद गीता का पाठ करना भी पुण्यदायक है, फलदायक है, लेकिन उससे अधिक उत्तम है कि उसको ज्ञान को हम स्वीकार करें, और उस ज्ञान को स्वीकार करने के बाद उसको हम अपने आचरण में लाएं। सन 2000 में जब पहले में श्री श्री राधा पारसाथी मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली में पहुंचा पहली बार, तो उस समय खोज तो चल रही थी, कुछ प्राप्त तो करना चाहता था लेकिन मिल नहीं रहा था। तो कुछ सुकृति एकत्र हुई तो राधा पारसार्थी के द्वार पर जा पहुंचे। वहां पर ये बात को समझाया जा रहा था, श्लोक बताया जा रहा था कि जो कुछ भी तुम खाते हो, पाप खाते हो। मैं तो अपने आप को बड़ा, मेरे को गर्व था अपने ऊपर कि मैं 15 साल से प्रभु जी मैं वेजिटेरियन हो गया हूं। 1985 से 2000 तक 15 साल हो गए मैं वेजिटेरियन हूं। हाउ डेयर यू से दैट आई एम ईटिंग सिन, मैं कैसे पाप खाता हूं, आप कैसे कह सकते हैं ये। प्रभु जी ने बड़े विनम्र होकर कहा, बोले मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं। मेरे पिताजी रोज भगवद गीता का पाठ करते हैं, उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। बोले मैंने कहा भगवद गीता तो सब एक जैसी होती हैं। बोले हाँ एक जैसी होती हैं, श्लोक भी एक जैसे होते हैं। फिर मेरे पिताजी ने मुझे क्यों नहीं बताया, वो तो पाठ करते हैं। बोले यही तो समस्या है। घर गया, घर जाकर के पिताजी का ग्रंथों का पोटला खोला, भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर खोली, निकाला 3.13 वही लिखा है, बात तो सही लिखी है, लेकिन मुझ तक क्यों नहीं प्राप्त हुई। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वैदिक ज्ञान पहले तो मिलना बड़ा दुष्कर है, और मिल जाए उसको सुनना बड़ा मुश्किल है, अगर सुन लें तो उसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, और स्वीकार कर लें तो उसको आचरण में लाना बड़ा मुश्किल है। कितनी बड़ी समस्याओं से ये मानव जीवन घिरा हुआ है। वैदिक ज्ञान, भगवान का ज्ञान, गीता का ज्ञान अगर किसी के जीवन में आ जाता है, अगर किसी को प्राप्त हो जाता है, तो वो बहुत ही भाग्यशाली है। अगर गुरु की कृपा मिल जाती है, ब्रह्मान भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कौन ऐसा व्यक्ति है। जब संसार में निकल के हम देखेंगे तो हमें भक्त ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। हम लोग वृंदावन में बैठे हैं ना, भक्तों का इतना मूल्यांकन हम नहीं कर पाते। जब विदेशों में जाएं तो आंखें पथरा जाएंगी, आंखें थक जाएंगी, कोई एक झोली वाला, माला झोली वाला कोई एक पूरे दिखाई दे जाए, नहीं दिखाई देता, बहुत मुश्किल है। वृंदावन में हमको लगता है कि हर गले में माला झूली है, ये बड़ी आम बात है, ये आम बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। और देखिए, धर्म जो है संसार में एक ही है, परम धर्म, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोषजे अहे तो की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, परम धर्म। लेकिन कली का दोष है, कलेर दोषे निधे राजन अस्ति है को महान गुना, कृष्णा देव कृष्णस्य। ये जो कली का दोष है, अब देखिए, वास्तव में न मैं हिंदू हूं, न मैं सिख हूं, न मैं ईसाई हूं, और न मैं मुस्लिम हूं। भगवान के द्वारा बनाया हुआ शाश्वत धर्म ही केवल धर्म है, लेकिन हम लोग स्वीकार करना पड़ता है। आज मैं मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, मेरे को मस्जिद जाना है, कुरान अदा करनी है। मैंने क्रिश्चियन परिवार में जन्म ले लिया, मेरे को हर संडे चर्च जाना है। मैंने सिख परिवार में जन्म ले लिया, मुझको गुरुद्वारे जाना है। मैंने हिंदू परिवार में जन्म ले लिया, मेरे को मंदिर जाना है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं। भगवद गीता में, पूरे भगवद गीता में कहीं ये नहीं है कि ये ग्रंथ जो है हिंदुओं के लिए है। ये भगवान और जीवात्मा का, परमात्मा और जीवात्मा का संबंध है, जिसको हम भ्रमित हो रहे हैं, पूरा संसार भ्रमित हो रहा है, पूरा संसार मोह में चल रहा है, भ्रम में चल रहा है। हमारे विश्व में बहुत सारे सिख परिवार हैं, और विश्व में बहुत सारे गुरुद्वारे भी हैं, और उन गुरुद्वारों में बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ गुरु ग्रंथ साहब की सेवा भी होती है। आप लोगों ने अगर कभी देखा हो तो गुरुद्वारों में सेवा का भाव बहुत अच्छा होता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े परिवारों से लोग आते हैं और वहाँ जा कर के सेवा करते हैं, आपके जूता चप्पल जोड़ी को स्वीकार करते हैं। बड़े बड़े परिवारों से आते हैं वो लोग, है ना। लेकिन अगर ग्रंथ में जो आदेश है वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे पूर्ण रूप से। और मेरे को बहुत दुख होता है कि इतना सब होने के बाद, इतना सब कुछ सेवा करने के बाद भी हम ग्रंथों के आदेश को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे। तो मैं आपको बताता हूं, गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत स्पष्ट शब्दों में जो लिखा है उसको मैं आपको बताता हूं। एक कृष्णाम ता सर्व देव देव देवता आताम आतम श्री वासव देवस्य जे कोई जानसी भेव नानकता को दासु है सोई निरंजन देव। सब देवताओं का मूल देव श्री कृष्ण है, गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं वही परम सत्य है। नानक उस नियंता के दास हैं जो भौतिक आंखों से परे हैं, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। और आगे अच्युत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर्जामी मधुसूदन दामोदर स्वामी, वही एक परमात्मा अविनाशी पर ब्रह्म और अंतर्यामी सर्वव्यापक स्वामी है। वही मधुसूदन मधु राक्षस को मारने वाला और दामोदर जिसके पेट पर रस्सी बांधी गई थी श्री कृष्ण ही है। ऋषिकेश गोवर्धन धारी मुरली मनोहर हरि गंगा मोहन माधव कृष्ण मुनारे जगदीश्वर हरि जीव असुर संहारे। जगजीवन अविनाशी ठाकुर घटघट वासी है संगा धरनी धर इस नरसिंह नारायण दारा उग्रे पृथ्वी धारण। धरती का संरक्षक कल्याण में नरसिंह तथा जल में रहने वाला विष्णु आदि सभी उसी भगवान के रूप में हैं। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाला शुक्र अवतार भी वही प्रभु है। बावन रपु किया तुगु करते समय सेती है चंगा, उसी ने बावन का रूप धारण किया जो आकर्षक और सर्व सुंदर है। अब बताइए ये वाणी गुरु ग्रंथ साहब की है या पूरे ग्रंथ में से अगर कृष्ण राम और हरि को निकाल दिया जाए तो ग्रंथ में कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं बचेगा। जब इतना सब कुछ हमारे पास है ज्ञान, लेकिन समस्या क्या है, इस ज्ञान को स्वीकार हम नहीं कर पा रहे, हम उसको आचरण में नहीं ला पा रहे। हम भगवान के चित्रों को गुरुद्वारों से हमने लुप्त कर दिया। किसी समय हर मंदिर में गुरु ग्रंथ साहब होते थे और हर गुरुद्वारे में भगवान के चित्र हुआ करते थे। आज सभी गुरुद्वारों से भगवान के चित्र, जबकि भगवान के साक्षात गुरु नानक जी प्रकट बोल रहे हैं कृष्ण हैं। कितनी बड़ी समस्या है ये हमारी मानसिक संकीर्णता, मानसिक संकीर्णता। जब जीसस क्राइस्ट आए तो उन्होंने उपदेश दिया, कहा यहूदियों को और अपने फॉलोअर्स को, दाउ शैल नॉट किल, आप किसी की हत्या नहीं करोगे। तो लोगों ने कहा, प्रभुपाद जी जब इस बारे में चर्चा कर रहे थे वहां विदेशों में, तो प्रभुपाद ने इसको कोट किया कि आपके जीजस बाइबल में कहते हैं कि आप किसी की हत्या नहीं करोगे, आप दिन पे दिन स्लॉटर हाउस खोलते जा रहे हैं। तो वहां जीजस क्राइस्ट के फॉलोअर्स ने कहा कि आप समझे नहीं हो प्रभुपाद को, कि उन्होंने कहा है कि आप मनुष्य की हत्या नहीं करोगे, पशुओं की हत्या करने को कहां मना किया है जीजस ने। तो प्रभुपाद कहते हैं अच्छा, तो जीजस को क्या उनकी इंग्लिश कुछ कमजोर थी, वो सही शब्द को इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। अगर केवल मनुष्यों का वध करने के लिए जीजस को कहना था तो जीजस क्या कहते, दाउ शैल नॉट मर्डर, आप किसी का मनुष्य को अगर वध करना है तो आप मर्डर शब्द यूज करेंगे, आप किलिंग शब्द यूज नहीं कर सकते। किलिंग शब्द यूज करने का मतलब है आप किसी भी लिविंग बींग का वो नहीं करोगे, वध नहीं करोगे। देखिए सब कुछ है, सुन भी लिया लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे, तो आचरण में आने की बात ही क्या है। तुम वध करने की बात करते हो, लाओ आपको सबसे पहले हम आपको ही सूली पर चढ़ा देते हैं, और सूली जीसस को ही सूली पर चढ़ा दिया। तो चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे सिखिज्म हो, सिखिज्म क्या है, शिष्य, शिष्य से सिख बन गया, कुछ नहीं है, एक ही परिवार के लोग हैं। लेकिन राजनीतिक कारणों से हम अपने आप को भगवान से अलग कर लेते हैं। अगर मैंने भी कृष्ण की पूजा करी और इस्कॉन में भी कृष्ण की पूजा हो रही है तो फिर हमारे और उनमें अंतर क्या रह गया। इसलिए तुम्हारे कृष्ण और हैं, हमारा कृष्ण ही कोई और है। ये भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों से हमको श्रील प्रभुपाद ने उबार लिया। श्रील प्रभुपाद हमारे सही मायने में गुरु हैं, वो हमारे वास्तविक गुरु हैं, और गुरु की शरण में जाए बगैर हमारा उद्धार नहीं हो सकता। चार प्रकार के गुरु बताए गए हैं। एक गुरु है पथ प्रदर्शक गुरु, एक गुरु है शिक्षा गुरु, एक गुरु है दीक्षा गुरु, और एक गुरु है चैत्य गुरु। जो आपको जीवन में एक बार भगवान के पास जाने का रास्ता बता दे वो आपके जीवन में पथ प्रदर्शक गुरु बन जाते हैं। रामानुजाचार्य जी दक्षिण भारत के परम संत हुए। जब एक दफा त्रिपुरा बालाजी जा रहे थे, बालाजी तो उस वक्त घना जंगल था, कोई रास्ते नहीं थे। उन्होंने एक आदिवासी से भील से मंदिर जाने का बालाजी के मार्ग पूछा, तो उस भील ने उनको बताया कि इस तरफ जाएंगे आप तो वहां त्रिपुरा बालाजी आप पहुंचेंगे, पूरा रास्ता समझाया। तो उन्होंने उसको जो है प्रणाम किया, श्री रामानुजाचार्य जी ने। तो उनके साथ जो और संगी थे उन्होंने कहा कि आप ऐसे भील को, ऐसे आदिवासी को आप प्रणाम कर रहे हैं। बोले आप नहीं जानते, इन्होंने मेरे को भगवान के पास जाने का मार्ग दिखाया है, ये मेरे पथ प्रदर्शक गुरु हैं। फिर हमारे जीवन में शिक्षा गुरु आते हैं, फिर दीक्षा गुरु आते हैं। चैत्य गुरु तो भगवान होते ही हमारे हृदय में, लेकिन भगवान की वाणी को हम सुन नहीं पाते, इसलिए भगवान बाहर प्रकट होते हैं गुरु के रूप में। तो शिक्षा गुरु का प्रतिनिधित्व हमारे षट गोस्वामी करते हैं, और दीक्षा गुरु का प्रतिनिधित्व नित्यानंद गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु करते हैं। इस तरीके से हमारे को वास्तविकता में अगर हीन भावना से कृष्ण भावना तक पहुंचिए, हमारे जीवन में बहुत सारी भावनाएं आती हैं, लेकिन उन सबको लांग करके हमें कहाँ पहुंचना है, कृष्ण भावना तक पहुंचना है, और यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, और इसको स्वीकार करना है। और स्वीकार कर लेंगे और इसको आचरण में ले आएंगे तो हम तीन गुणों से छूट सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है जीवन कैसा होगा, सुखमय होगा और शांतिमय होगा। अगर हम उस बात को स्वीकार नहीं करते तो भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में, मत चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसाद तरिष्यसी अथा चेतु महत्व कारण न श्रूयसी विनक्ष्यसी। यदि तुम मुझसे भावना भावित नहीं होंगे, यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद जीवन के सारे अवरोधों को, सारे ऑब्स्टिकल्स को पार कर जाओगे, और मेरी कृपा से तुम सब अवरोधों को लांग जाओगे। यदि तुम अहंकारवश मेरी बातों को नहीं सुनोगे तो क्या होगा, आप विनिश्चसी को विनाश हो जाएगा। विनाश होने का मतलब अब मनुष्य जीवन को खो देंगे। मनुष्य जीवन को मिला है, ये हमारे ऊपर महत कृपा है भगवान की, लेकिन यू पे एंड स्टे, आपको मनुष्य शरीर में तभी तक रहने दिया जाएगा जब इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपसे ये घर खाली करवा लिया जाएगा, फिर कोई छोटा दे दिया जाएगा। आज आप 4 BHK में हैं, आपको 1 BHK अलॉट कर देंगे। मनुष्य जीवन से आप और किसी योनि में स्थानांतरित हो जाओगे। तो इसीलिए सही मार्ग पे चलने के लिए हमारे को शिला प्रभुपाद के ग्रंथों का और उनके ग्रंथों को स्वीकार करने का, आचरण करने का बहुत आवश्यक है और सब लोगों को बताना है। पूरे विश्व में आज हमारे इस्कॉन के मंदिर ही ऐसे मंदिर हैं जो भक्ति कैसे की जाती है वो मार्ग दिखाया जाता है। कौन से ऐसे मंदिर हैं विश्व में जाकर के देखिए जहां भक्ति करना सिखाया जाता है, कहीं मंदिर नहीं मिलेंगे आपको। कहीं चले जाइए, कहीं नहीं बताया जाएगा, केवल आप प्रणामी डालिए, चरणामृत लीजिए और आगे बढ़िए। बड़ी प्रसन्नता होती है जब इस्कॉन के मंदिर में वृंदावन में सुबह सुबह जब अनाउंसमेंट होती है, जो लोग प्रथम बार वृंदावन आए हैं कृपा करके दाहिने बने हुए कमरे में आइए और हम आपको बताएंगे भक्ति कैसे करनी है, हरि नाम का जप कैसे करना चाहिए, हरि नाम क्यों करना चाहिए, हरि नाम के क्या लाभ होते हैं बताइए। कितनी बड़ी बात है, कौन बता रहा है आज, कौन ज्ञान दे रहा है, ऐसा ज्ञान कहाँ से मिलेगा। हर चीज की कीमत है, हर चीज कीमत आंकी जा रही है। ये प्रभुपाद का ज्ञान, ये प्रभुपाद ने हमारे को ऐसे परिवार में शामिल कर लिया है। हमारे अगर चमड़ी का जूता बनाकर भी प्रभुपाद को पहनाया जाए तो हम उनका ऋण नहीं उतार सकते। इसलिए जो हमको प्राप्त हुआ है उसको बिल्कुल भी कम मत आंकिए, और हमारे इस ज्ञान को, हमारे इस धरोहर को हम कैसे औरों तक पहुंचाएं, इसका प्रयास करना चाहिए सबको मिलकर के। हरे कृष्णा, यहीं मैं विराम देता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।